जय राधा माधव कुंज बिहारी माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत्श्री श्रीमदिष्टवाइन ग्रीस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय नित्यलीला प्रभुस्कॉन फाउंडर आचार्य शिव दी होलवर्ण जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्ति वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ स्मृति ललिता विशाखा गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताई भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एन गौरांग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारूप अध्याय 7 भगवत ज्ञान श्लोक संख्या 24 और पृष्ठ संख्या 263 निकाला सबने। बोलिए मेरे पीछे। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम
अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम
मन्यन्ते माम बुद्धयः
मन्यन्ते माम बुद्धयः
परम भावम अजानन्तो
परम भावम अजानन्तो
ममाव्ययम् अनुत्तमम्
ममाव्ययम् अनुत्तमम्
अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम
अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम
मन्यन्ते माम बुद्धयः
मन्यन्ते माम बुद्धयः
परम भावम अजानन्तो
परम भावम अजानन्तो
ममाव्ययम् अनुत्तमम्
ममाव्ययम् अनुत्तमम्
अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम्
अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम्
मन्यन्ते माम बुद्धयः
मन्यन्ते माम बुद्धयः
परम भावम अजानन्तो
परम
ममाव्ययम् अनुत्तमम्
ममाव्ययम् अनुत्तमम्।
बोलिए।
अव्यक्तम् व्यक्तिमापन्नम्
अव्यक्तम् व्यक्तिमापन्नम्
मन्यन्ते माम बुद्धयः
मन्यन्ते माम बुद्धयः
परम भावम् अजानन्तो
परम भावम् अजानन्तो
ममाव्ययम् अनुत्तमम्
ममाव्ययम् अनुत्तमम् अव्यक्तम् व्यक्तिमापन्नम्
अव्यक्तम् व्यक्तिमापन्नम्
मन्यन्ते माम बुद्धयः
मन्यन्ते माम बुद्धयः
परम भावम् अजानन्तो
परम भावम् अजानन्तो
ममाव्ययम् अनुत्तमम्
ममाव्ययम् अनुत्तमम्
अव्यक्तम् व्यक्तिमम् अपन्नम्
अव्यक्तम् व्यक्तिमापन्नम्
मन्यते माम बुद्धयः
मन्यन्ते माम बुद्धयः
परम भावम् अजानन्तो
परम भावम् अजानन्तो
मम अव्ययम् अनुत्तमम्
ममाव्ययम् अनुत्तमम्
अव्यक्तम् व्यक्तिमापन्नम्
अव्यक्तम् व्यक्तिमापन्नम्
मन्यन्ते माम बुद्धयः
मन्यन्ते माम बुद्धयः
परम भावम् अजानन्तो
परम भावम् अजानन्तो
ममाव्यय अनुत्तमम्
ममाव्ययम् अनुत्तमम्।
शब्दार्थ मेरे पीछे बोलिए। अव्यक्तम्
अव्यक्तम्
अप्रकट
अप्रकट
व्यक्तिम्
व्यक्तिम्
स्वरूप को आपन्नम
प्राप्त हुआ
मन्यन्ते सोचते हैं माम मुझको अबुद्धयः अल्पज्ञानी व्यक्ति परम परम भावम सत्ता अजानन्तः बिना जाने मम मेरा अव्ययम् अनस्वर अनुत्तमम् सर्वश्रेष्ठ
जाने
मम मेरा अव्ययम् अनस्वर अनुत्तमम् सर्वश्रेष्ठ बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं यानी भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो यहाँ धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालिए, प्रार्थना बोलेंगे। देखो पीछे नहीं मिल रहा है, उनका निकाल दो पीछे वालों का। प्रार्थना निकालिए, प्रार्थना किताब बदल दो, किताब बदलो। सबको मिल गया, देखो पीछे नहीं मिला उनको, पीछे उनका निकाल दो, पीछे पीछे मिल गया। ठीक है, सबको मिल गया। मेरे साथ बोलिए, ओम अज्ञान तिमिरां दास ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवां श्रीराधा कृष्णपादां सागण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कां श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछा कल्पितरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाशात देश तारिणे श्लोक फिर से निकालिए, श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धिया अबुद्धिया, मतलब जिनके पास बुद्धि नहीं है। कोई बात नहीं, बातें बिल्कुल नहीं, बच्चों को शांत करिए, जो खड़े हैं वो बैठ जाएं, कोई खड़ा नहीं रहेगा, कोई बात नहीं करेगा, बिल्कुल शांत, कोई बात नहीं। अबुद्धिया, भगवान कह रहे हैं जिनके पास बुद्धि नहीं है, जिनके पास दिमाग नहीं है, वो मुझे क्या समझते हैं? अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम, निराकार से मुझको साकार समझते हैं कि पहले निराकार था और फिर मैं साकार हुआ हूं। ऐसा लोग सोचते हैं, सोचते हैं कि नहीं? क्या कहते हैं? ओम, ओम से कृष्ण पैदा हुए हैं, ओम निराकार है, निराकार ज्योति से कृष्ण पैदा हुए, है ना? दिमाग नहीं उनके पास, भगवान कह रहे हैं दिमाग नहीं उनका, उनके पास, इसलिए क्या सोचते हैं कि निराकार से मैं साकार बन गया हूं, है ना? अबुद्धिया, परम भावम अजानंतो मम ये मनोत्तमम, मेरे अविनाशी स्वभाव को नहीं जानते, परमेश्वर के स्वभाव को नहीं जानते, अनुत्तमम जिससे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है, हा? उसको नहीं जानते। भगवान का कितना सुंदर रूप है, कृष्ण का कितना सुंदर रूप है, लेकिन वो क्या कहते हैं? नहीं नहीं, ये तो अनित्य है, पहले कृष्ण का ये रूप नहीं था, निराकार थे, और अब फिर से निराकार हो गए, कृष्ण का रूप नहीं रहा। और कृष्ण क्या कहते हैं? परम भावम जानंतो, मेरे परमेश्वर के भाव को नहीं जानते हैं, अविनाशी और अनुत्तम। अनुत्तमम का मतलब, अनुत्तमम, हाँ, अनुत्तमम का मतलब सर्वश्रेष्ठ। ये शब्द बना कैसे? अनुत्तम ये शब्द बना कैसे? अन, अन माने नहीं, और उत्तम माने उत्तम, जिससे उत्तम कोई नहीं है, है? समझे कि नहीं? अनुत्तम का अर्थ क्या हुआ? सर्वश्रेष्ठ, अन उत्तम, अन माने नहीं, उत्तम माने श्रेष्ठ, जिससे उत्तम कोई नहीं है उसको कहते हैं अनुत्तम। और अभियम, अभियम का मतलब अविनाशी, अविनाशी, अविनाशी और अनुत्तम, दोनों बातें समझना। कोई चीज होती है बहुत बढ़िया होती है, बहुत बढ़िया होती है, बहुत सुंदर होती है कोई चीज, लेकिन आगे चलकर क्या होता है? समाप्त हो जाती है। जैसे फूल, बहुत सुंदर फूल है, बहुत सुंदर फूल है, आगे चल के क्या होता है? मुरझा जाता है, है कि नहीं? या कोई स्त्री है, बहुत सुंदर स्त्री है, आगे चल के क्या होता है? बूढ़ी हो जाती है, है कि नहीं? सुंदरता समाप्त हो जाती है। लेकिन भगवान में दोनों बातें हैं, अविनाशी भी हैं, अभियम और अनुत्तमम, जिनसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है ना? तो दो बातों को समझना है, जो बुद्धिमान है वो इन दोनों बातों को समझता है, और जो बुद्धिमान नहीं है तो वो क्या सोचता है? कि नहीं नहीं, कृष्ण तो पहले निराकार थे, है? और कृष्ण का ये जो साकार रूप है इन निराकार की तुलना में हल्का है, हाँ, निराकार श्रेष्ठ है, साकार से निराकार श्रेष्ठ है, दुर्भाग्य है, वे अभाग्य हैं जो भगवान के रूप का आनंद नहीं लेते, है ना? तो हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं।
श्रील प्रभुपाद की देवताओं के उपासकों को अल्पज्ञ कहा जा चुका है,
उपासकों को अल्पज्ञ कहा जा चुका है,
और इस श्लोक में निर्विशेषवादियों को भी अल्पज्ञ कहा गया है। हाँ, देवताओं की पूजा की चर्चा भगवान ने कहाँ शुरू की थी? 20वें श्लोक से भगवान ने देवताओं की पूजा का विषय शुरू किया था और 23वें श्लोक में बताया कि उनकी पूजा के फल का अंत हो जाता है। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि हमें कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण की पूजा के फल का अंत नहीं होता। साकार है उनका भी अंत नहीं है। जो साकारवादी हैं, क्या कृष्ण को वो अंत वाला मानते हैं? क्या कृष्ण अनंत है? कृष्ण का रूप अनंत है, उनका सौंदर्य अनंत है, उनके गुण भी अनंत हैं, सब कुछ तो अनंत है कृष्ण के, और उनका रूप भी अनंत है। जो निराकारवादी हैं, वो क्या मानते हैं कि भगवान क्या है? निराकार है। निराकार समझते क्या है? जिसका आकार नहीं है। हाँ, भगवान कृष्ण अपने साकार रूप में यहाँ पर अर्जुन से बातें कर रहे हैं, किंतु तब भी निर्विशेषवादी अपने अज्ञान के कारण तर्क करते रहते हैं कि परमेश्वर का अंततः कोई स्वरूप नहीं होता। देखा, जब कृष्ण स्वयं अर्जुन से कह रहे हैं मैं अजन्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, अनुत्तम हूँ, है ना, तो भी वो क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, ये कृष्ण नहीं बोल रहे, कृष्ण के मुंह से निराकार बोल रहा है। बड़े बेवकूफ है, कितने बेवकूफ हैं। कृष्ण मैं और कृष्ण के आत्मा में कोई अंतर नहीं है, है ना, लेकिन वो कृष्ण के शरीर को कृष्ण की आत्मा से अलग मानते हैं। जहां कृष्ण कहते हैं कि मेरी शरण में आओ, तो वो क्या कहते हैं, कृष्ण की शरण मत लो, कृष्ण के अंदर जो आत्मा है उसकी शरण लो। बेवकूफ है, कृष्ण की आत्मा में और कृष्ण के शरीर में कोई अंतर नहीं है, है ना। तो ये निर्विशेषवादी निराकारवादी हैं, तो अज्ञान है। श्री रामानुजाचार्य की परंपरा के महान भगवत भक्त यामुनाचार्य ने इस संबंध में दो अत्यंत उपयुक्त श्लोक कहे हैं, स्तुत रत्न 12। त्वाम शील रूप चरित परम प्रकृष्ट सत्व न सात्विकतया प्रबल शास्त्र प्रख्यात देव परमार्थ विदाम मतश्च नैवासुर प्रकृतया प्रभवन्ति बोद्धुम। हे प्रभु, व्यास देव तथा नारद जैसे भक्त आपको भगवान रूप में जानते हैं। मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथों को पढ़कर आपके गुण रूप तथा कार्यों को जान सकता है और इस तरह आपको भगवान के रूप में समझ सकता है, किंतु जो लोग रजो तथा तमो गुण के वश में हैं, ऐसे असुर तथा अभक्तगण आपको नहीं समझ पाते। ऐसे अभक्त वेदांत उपनिषद तथा वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने में कितने ही निपुण क्यों ना हो, वे भगवान को नहीं समझ पाते। आप समझ रहे हैं? तो ये रजोगुण तमोगुण में भरे हुए हैं। जो निराकारवादी हैं, ये रजोगुण तमोगुण में भरे हुए हैं, इसलिए दिमाग जो है ना, भौतिक दिमाग है उनका, तो भौतिक दिमाग से वो सोचते हैं कि भाई संसार में जितना भी शरीर है वो सब नश्वर है, इसलिए भगवान का भी शरीर नश्वर है, इस प्रकार से सोचते हैं, है ना, रजोगुण तमोगुण में है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है कि केवल वेदांत साहित्य के अध्ययन से भगवान को नहीं समझा जा सकता, परम पुरुष को केवल भगवत कृपा से जाना जा सकता है। हाँ, वेदेश वो है ना, वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो। शुरू में क्या है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम चा वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो गोविंद मादि पुरुषम तमाम बजामी। वेदों के द्वारा कृष्ण को जानना बहुत दुर्लभ है, लेकिन अदुर्लभम आत्म भक्तो, ये अपने भक्तों के लिए वो दुर्लभ नहीं है, उनको जानना उनको प्राप्त करना बहुत आसान है। अदुर्लभम आत्म भक्तो, है ना, तो ये प्रभुपाद लिखते हैं आगे, परम पुरुष को केवल भगवत कृपा से जाना जा सकता है। अतः इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न केवल देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, अपितु वे अभक्त भी जो कृष्ण भावनामृत से रहित हैं, जो वेदांत तथा वैदिक साहित्य के अध्ययन में लगे रहते हैं, अल्पज्ञ हैं
और उनके लिए ईश्वर के साकार रूप को समझ पाना संभव नहीं है। आगे जो लोग परम सत्य को निर्विशेष करके मानते हैं वे अबुद्धियां बताए गए हैं, जिसका अर्थ वे लोग जो परम सत्य के परम स्वरूप को नहीं समझते। मतलब भगवान का इतना सुंदर जो शरीर है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, करोड़ों काम देवों के से भी कमनीय है, जिनकी विशेष शोभा है, है ना। और उस सौंदर्य को जो है क्या मानते हैं, अरे तो माया का बना हुआ है, ये तो अनित्य है, तो ये अभागे हैं। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि परम सत्य के परम स्वरूप को नहीं समझते। परम भावम, इस लोग में कहा गया परम भावम अजानंतो, मेरे परम भाव को नहीं जानते। आगे श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म से ही परम अनुभूति प्रारंभ होती है, जो ऊपर उठती हुई अंतर्यामी परमात्मा तक जाती है। किंतु परम सत्य की अंतिम अवस्था तो भगवान है। आधुनिक निर्विशेषवादी तो और भी अधिक अल्पज्ञ हैं, क्योंकि वे अपने पूर्वगामी शंकराचार्य का भी अनुसरण नहीं करते, जिन्होंने स्पष्ट बताया है कि कृष्ण परमेश्वर हैं। शंकराचार्य बताते हैं, क्या बताते हैं, कि कृष्ण परमेश्वर हैं। नारायण परोव्यक्तात्, शंकराचार्य ने बताया। आगे अतः निर्विशेषवादी परम सत्य को न जानने के कारण सोचते हैं कि कृष्ण देव की तथा वसुदेव के पुत्र हैं, या कि राजकुमार हैं, या कि शक्तिमान जीवात्मा हैं। हाँ, ये बहुत ज्यादा फैला हुआ है, और ये लोग जो है ऐसे विचार बहुत ज्यादा फैला रहे हैं। ये आप लोग बातें क्यों कर रहे हैं, बातें क्यों कर रहे हैं, बार बार समझाया जा रहा है कि बातें ना करिए, बिल्कुल शांत रहिए, बातें बिल्कुल नहीं। ये जो निर्विशेषवादी हैं, बहुत प्रचार कर रहे हैं कि कृष्ण तो देव की वसुदेव के पुत्र हैं, देव के पुत्र हैं। जब भगवान गर्भ में थे, देव की गर्भ में थे, तो समय कारागार में शंकर ब्रह्मा आदि सब देवता आए, उनको अजन्मा कह करके स्तुति की। शंकर ब्रह्मा भी उनको अजन्मा कह रहे हैं, और जब उन्होंने जन्म लिया तो उनके माता पिता देव की वसुदेव ने भी क्या कहा, कि आप अजन्मा हैं। जिन्होंने जन्म दिया वे भी कहते हैं कि किसने जन्मा है, अविनाशी हैं। और ये जो मूर्ख लोग हैं वो कहते नहीं नहीं, वो तो पैदा हुए, देव की वसुदेव से पैदा हुए। तो ये अज्ञान है, शास्त्र नहीं देखते। जिन शास्त्रों में कहा गया है कि देव की वसुदेव ने उनको जन्म दिया, उन्हीं शास्त्रों में बताया गया है कि वे अजन्मा हैं, और ब्रह्मा शिव जैसे देवताओं ने भी उनको अजन्मा कह करके प्रार्थना की है, और जो माता पिता जिन्होंने जन्म दिया उन्होंने भी प्रार्थना की उनकी कि आप अजन्मा हैं। तो उन्हीं शास्त्रों से वे क्यों नहीं निष्कर्ष निकालते हैं कि कृष्ण वास्तव में देव की वसुदेव के पुत्र हैं, या वे अजन्मा हैं।
शास्त्र की एक बात को वे पकड़ लेते हैं और दूसरी बात को वे छोड़ देते हैं, ये कितनी गलत बात है। कृष्ण देव की वसुदेव से पैदा हुए,
ये तुम्हें कहां से पता चला? जब शास्त्रों से पता चला तो उन्हें शास्त्रों में क्यों नहीं देखते कि देव की वसुदेव ने ही उनको कहा कि आप क्या हैं, अजन्मा हैं, अजन्मा हैं। तो यही प्रभुपाद लिखते हैं भगवद गीता में 9:11 भी इसकी भर्त्सना की गई है। भर्त्सना मतलब निंदा, निंदा की गई है। कैसे, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तन्माश्रितम्, केवल मूर्ख ही मुझे सामान्य मनुष्य मानते हैं। अब देखो वसुदेव देव की जो कृष्ण के माता पिता हैं, वे मूर्ख नहीं है। क्या मूर्ख हैं? नहीं। कैसे, कैसे आप कह सकते हैं कि मूर्ख नहीं है? कृष्ण के माता पिता देव की वसुदेव मूर्ख नहीं है, आप कैसे कहते हैं? भगवान को उन्होंने, भगवान को उन्होंने अजन्मा माना, उन्होंने अजन्मा कहकर के भगवान की प्रार्थना करी है ना। तो जो मूर्ख लोग हैं वो मुझे मनुष्य मानते हैं, सामान्य मनुष्य मानते हैं। आगे तथ्य तो यह है कि कोई बिना भक्ति के तथा कृष्ण भाव नामृत विकसित किए बिना कृष्ण को नहीं समझ सकता। अब देखो, बिना भक्ति के नहीं कृष्ण को समझ सकता, ठीक बात कह रहे हैं। अगर बार बार सुन भी लो तो भी दिमाग में बात बैठती नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी ने भक्ति के नियम दिए। क्या भक्ति के नियम दिए? भक्ति के नियम दिए, भक्ति के नियमों का पालन करो अगर कृष्ण को समझना है तो। क्या? श्रवणम कीर्तनम। लेकिन और व्यवहारिक रूप में सबसे जरूरी, चार नियम से ज्यादा जरूरी, लेकिन हरि नाम जाप कितना जाप? 16 माला। सबसे ज्यादा जरूरी 16 माला जाप। आप कहीं भी हो, कैसे भी हो, 16 माला जाप करो। हंस के करो या रो के करो, 16 माला पूरी करो, है ना। भक्ति के नियम दिए, है ना। तो ये प्रभुपाद ने दिए, ये किस लिए दिए? ये 16 माला जाप क्यों करते हैं आप, किस लिए? यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, किस लिए? ये भक्ति के जो नियम दिए प्रभुपाद ने, किस लिए दिए?
हाँ, सेवा मांगते हैं जिससे हम भगवान को समझ सकें। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, तथा तो यह है कि कोई बिना भक्ति के तथा कृष्ण भावनामृत विकसित किए बिना कृष्ण को नहीं समझ सकता।
हाँ? और कैसे नहीं समझ सकता कृष्ण को? कृष्ण क्या है? अजन्मा है। और इस श्लोक में क्या कहा गया है? अभियम तो हो गया, अविनाशी। और क्या है? अनुत्तमम। अनुत्तम उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, अविनाशी और सबसे श्रेष्ठ। कोई व्यक्ति सोचता है कि भगवान अविनाशी तो हैं, लेकिन हो सकता है कि हम ज्यादा अच्छे हों, भगवान से अच्छे हम हैं। लेकिन भगवान से अच्छा कोई नहीं है। चाहे आप सुंदरता में देख लो तो भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। धन संपत्ति में देख लो तो भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। बल में भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। यश में भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। वैराग्य में भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। और ज्ञान, ज्ञान में भगवान से बढ़कर कोई नहीं। किसी भी मामले में भगवान से कोई बढ़कर नहीं हो सकता है, इसलिए अनुत्तम है। तो ये समझना जो है हमारे जीवन का लक्ष्य है। अगर हम ये समझ लें तो फिर कृष्ण में आसक्त हो जाएंगे। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इसकी पुष्टि भागवत में 10-14-29 हुई है। अथापि ते देव पदाम्बुजे द्वयम् प्रसाद लेसानुग्रहेत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्। हे प्रभु, यदि कोई आपके चरण कमलों की रंच मात्र भी कृपा प्राप्त कर लेता है तो मैं आपकी महानता को समझ सकता है। आपकी महानता को समझ सकता है। किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए मानसिक कल्पना करते हैं, वे वेदों का वर्षों तक अध्ययन करके भी नहीं समझ पाते। अपनी कल्पना से कोई अगर प्रयास करेगा समझने का, तो सालों सालों वेदों का अध्ययन करता रहे और समझ नहीं पाएगा। है? कोई सज्जन है, 18 पुराण खरीदी उन्होंने, हम 18 पुराणों का जो है ना अध्ययन करेंगे, है? और इसी अध्ययन से हम विद्वान बन जाएंगे, हम सबको जान जाएंगे। भक्तों के संग में और भक्तों को प्रणाम करके, भक्तों की सेवा करके, प्रश्न करके वो नहीं समझना चाहते। हम 18 पुराण पढ़ करके हम सबको जान लेंगे? नहीं। जब तक कोई व्यक्ति भक्ति की शरण नहीं लेता है तब तक भगवान को नहीं समझ सकता है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, कोई ना तो मनोधर्म द्वारा, हम जा रहे हैं क्या? हाँ। कोई ना तो मनोधर्म द्वारा न ही वैदिक साहित्य की व्याख्या द्वारा भगवान कृष्ण या उनके रूप को समझ सकता है। भक्ति के द्वारा ही उन्हें समझा जा सकता है। जब मनुष्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महानतम जप से प्रारंभ करके कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया तन्मय हो जाता है, तभी वह भगवान को समझ सकता है। अभक्त निर्विशेषवादी मानते हैं कि भगवान कृष्ण का शरीर इसी भौतिक प्रकृति का बना है और उनके कार्य उनका रूप इत्यादि सभी माया है। ये निर्विशेषवादी मायावादी कहलाते हैं, ये परम सत्य को नहीं जानते हैं। तो जो निर्विशेषवादी हैं वे मायावादी क्यों कहलाते हैं? प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? निर्विशेषवादियों को मायावादी क्यों कहा जाता है? हाँ, मायावादी क्यों कहते हैं निर्विशेषवादियों को? भगवान के रूप को, भगवान की लीला को भी माया कहते हैं, है ना? कितने अज्ञान है, कितना ज्ञान है। आगे हाँ, ये परम सत्य को नहीं जानते। 20वें श्लोक में स्पष्ट है, कामेस्तस्य हृद्ज्ञाना प्रपद्यन्ते न देवता। जो लोग कामेच्छाओं से अंधे हैं वे अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। ये स्वीकार किया गया है कि भगवान के अतिरिक्त अन्य देवता भी हैं, जिनके अपने अपने लोक हैं और भगवान का भी अपना लोक है। जैसा कि 23वें श्लोक में कहा गया है, देवान देव जो जानते मद्भक्ता जानते मामपी, देवताओं के उपासक उनके लोगों को जाते हैं और जो कृष्ण के भक्त हैं वे कृष्ण लोक को जाते हैं। यद्यपि ये स्पष्ट कहा गया है किंतु तो भी मूर्ख मायावादी ये मानते हैं कि भगवान निर्विशेष हैं और ये विभिन्न रूप उन पर ऊपर से थोपे गए हैं। कितने मूर्ख हैं, जब देवताओं का अपना स्थान है, है? तो उसी प्रकार से कृष्ण का अपना स्थान है, भगवान का भी अपना राज्य है, है कि नहीं? स्पष्ट है। क्या गीता के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि देवता तथा उनके धाम निर्विशेष हैं? जब देवता और उनके धाम जो है अगर वास्तविक है ना, तो फिर कृष्ण का धाम क्यों वास्तविक नहीं होगा, निराकार क्यों होगा? आगे, वे सभी व्यक्ति हैं, भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, उनका अपना लोक है और देवताओं के भी अपने अपने लोक हैं। अतः ये अद्वैतवादी तर्क कि परम सत्य निर्विशेष है और रूप ऊपर से थोपा आरोपित हुआ है सत्य नहीं उतरता, यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि ये ऊपर से थोपा हुआ नहीं है। भगवद्गीता से हम स्पष्ट या समझ सकते हैं कि देवताओं के रूप तथा परमेश्वर का स्वरूप साथ साथ विद्यमान है और भगवान कृष्ण सच्चिदानंद रूप हैं। देवताओं का रूप सच्चिदानंद नहीं है और भगवान का रूप सच्चिदानंद है, ये अंतर है। लेकिन जैसे देवताओं का रूप है वैसे भगवान का भी रूप है ना? लेकिन देवताओं का रूप सच्चिदानंद नहीं है और भगवान का रूप सच्चिदानंद है। क्या मतलब सच्चिदानंद का मतलब क्या है? सचित और आनंद। सत का मतलब सनातन और चित का मतलब ज्ञान और आनंद, सब प्रकार के सुख, सब प्रकार का रस जिनके शरीर में है, है ना? जबकि हमारा भौतिक शरीर या देवताओं का भी शरीर क्या है? उल्टा है। कैसा? असत, अचित और निरानंद, है ना? आगे सच्चिदानंद। हाँ, वेद भी पुष्टि करते हैं कि परम सत्य आनंदमयोभ्यासात, अर्थात वे स्वभाव से ही आनंदमय हैं और वे अनंत शुभ गुणों के आगार हैं। आगार मतलब पात्र, अनंत शुभ गुणों के आगार हैं। अनंत अनंत गुण हैं और शुभ गुण हैं भगवान के। गीता में भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे अज अजन्मा हैं तो अभी वे प्रकट होते हैं। भगवत गीता से हम इन सारे तथ्यों को जान सकते हैं, अतः हम ये नहीं समझ पाते कि भगवान किस तरह निर्विशेष हैं। जो मायावादी हैं, जैसे भगवान को कहा कि भी अजन्मा है तो वो मान लेते निराकार। जहां कहा कि भी अजन्मा है तो कहते वो तो निराकार होगा। क्यों? क्योंकि जितना आकार होता है सबका जन्म होता है। तो अपनी भौतिक बुद्धि से
वो विचार करते हैं कि इस भौतिक संसार में जितने भी आकार होते हैं उनका जन्म होता है, तो इसी प्रकार से भगवान का भी जो आकार है वो कभी पैदा हुआ है। तो जैसे भगवान को कहा गया अजन्मा, तो ये मान लेते हैं कि वो निराकार है, तो ऐसा तो नहीं है। आगे भगवद गीता से हम इन सारे तथ्यों को जान सकते हैं, अतः हम ये नहीं समझ पाते कि भगवान किस तरह निर्विशेष हैं। जहां तक गीता के कथन है उनके अनुसार निर्विशेषवादी अद्वैतवादियों का यह आरोपित सिद्धांत मिथ्या है। यहाँ यह स्पष्ट है कि परम सत्य भगवान कृष्ण के रूप और व्यक्तित्व दोनों हैं। व्यक्तित्व है भगवान का, इसका मतलब क्या हुआ? भगवान का रूप भी है और व्यक्तित्व भी है, इसका क्या मतलब हुआ? परम सत्य भगवान का रूप भी है और व्यक्तित्व भी है। हाँ, रूप भी है और व्यक्तित्व भी है। कोई व्यक्ति कहे भी भगवान का रूप तो है, जैसे मंदिर में खड़े हैं भगवान, है ना, तो कुछ मांगते नहीं है, ना कुछ इच्छा करते हैं, ना कुछ बोलते हैं, ऐसे पत्थर की तरह खड़े हैं, तो भगवान का रूप तो है लेकिन व्यक्तित्व तो नहीं है। व्यक्तित्व तो मतलब कोई इच्छा नहीं है, हाँ, उनकी कोई अपनी कोई इच्छा नहीं होती, नहीं, उनकी भी अपनी कोई इच्छा होती है, उनकी भी पसंद होती है, और भगवान ये चाहते हैं कि आप ये करो ये ना करो, मुझे ये खिलाओ मुझको ये नहीं खिलाओ, भगवान चाहते हैं। अगर आप जानना चाहते हो तो भगवान आपको जो है ये बात बताएंगे कि आप क्या करो और क्या नहीं करो, उन्हें क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है भगवान को। जैसे बरहावदंसम, मोर पंख का मुकुट उनको पसंद है, क्यों? क्योंकि उनका एक व्यक्तित्व है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी कोई पसंद होती है, तो भगवान की अपनी पसंद क्यों नहीं है? उनको मोर पंख ही पसंद है, है कि नहीं? और पीतांबरम ना, पीला वस्त्र धारण करते हैं, है ना, उनको पसंद है। तो ये व्यक्तित्व कहलाता है। हर व्यक्ति की अलग अलग पर्सनालिटी होती है, व्यक्तित्व होता है, तो भगवान की भी अपनी पर्सनालिटी है। वेणुम कुणंतम, उनकी पर्सनालिटी क्या है? बंसी बजाना, उनको उनकी अपनी पसंद है, वो बंसी बजाते हैं। तो आप अगर जानना चाहते हो तो आपको उनका व्यक्तित्व तो पता चलेगा कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ये नहीं है जो करो आप चाहे जैसे करो भगवान तो हमेशा प्रसन्न रहेंगे, तो फिर उनका व्यक्तित्व तो क्या रहा? ऐसा तो नहीं है। अगर आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो आपको जानना पड़ेगा कि मैं क्या चाहता हूं। ऐसे थोड़ी है कि अपने आप मान लो कि हाँ प्रभु जी तो प्रसन्न हो गए और आप जो मर्जी चाहो वैसे करो और समझो कि हाँ मैं प्रसन्न हूं, तो ऐसे तो नहीं। भगवान उनका व्यक्तित्व है, जब उनका व्यक्तित्व है तो आपको जानना पड़ेगा, आपको जानना जरूरी है कि वो क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं, है ना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं, अनंत तनुज किंकरम, अनंत तनुज तब किंकरम, तुम्हारा किंकर हूं मैं। किंकर का मतलब क्या है? किंकर, मैं आपका किंकर हूं, किंकर का मतलब क्या है? दास, हाँ दास, लेकिन शब्द बना कैसे किंकर? हाँ, क्या करूं, किम करोमी, मैं क्या करूं, क्यों? उनकी एक पर्सनालिटी है, तो आपको जानना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा, हाँ, कि मैं क्या करूं, है ना, कि जानना जरूरी है। और जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये भी प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? कि मुझे अपनी सेवा में लगाओ, मतलब जो आप चाहते हो वैसे मुझे काम कराओ, मुझे अपनी सेवा में लगाओ। जब हरे कृष्णा हम बोलते हैं तो ये प्रार्थना होती है, मुझे अपनी सेवा में लगाओ। इसका मतलब क्या है? आपको जो पसंद है वो मुझसे कराओ और जो आपको पसंद नहीं है वो मुझसे ना कराओ, है ना। प्रभुपाद ने प्रार्थना की कृष्ण से कि आप मुझे ना चाहो, मैं आपके हाथ की कठपुतली हूं, आप जैसे चाहो वैसे मुझे नचाओ, है ना। तो मतलब आपकी प्रसन्नता के लिए ही मैं सब काम करूं। तो उनकी उनका व्यक्तित्व है, वो आपसे कुछ चाहते हैं और वो आपको जानना है कि वो क्या चाहते हैं, अगर आपको प्रसन्न करना चाहते हो, है ना। लेकिन जो निर्विशेषवादी हैं वो क्या कहते हैं? ना ना ना, उनका कोई व्यक्तित्व तो है ही नहीं, आप जो मर्जी चाहो करो, यत मत तत्पथ, आप खुद ही परमात्मा हो, आप खुद ही परमेश्वर हो, आपकी जो मर्जी है सो करो, आत्मा सो परमात्मा है? आपको जो अच्छा लगता है वही करो, वही परमात्मा उसी में प्रसन्न है। तो परमात्मा कोई देखते तो ही नहीं है, गलत है। परमात्मा जो है एक व्यक्ति है और उनकी भी अपनी इच्छा है, और आज जब उनकी इच्छा के विरुद्ध आचरण करते हो तो आपको कष्ट भोगना पड़ता है और वो प्रसन्न नहीं होते हैं, उनसे संबंध टूट जाता है, है? आपको ये समझना पड़ेगा। अगर आप जो है दुखों से छूटना चाहते हो तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपने कुछ गलती की है, उनकी इच्छा के विरुद्ध आचरण किया है, इसलिए आप उनसे दूर हुए हो। वो भगवान जो है आपको अपने पास क्यों नहीं रखते है? क्यों नहीं रखते आपको भगवान अपने पास? उनके अनुसार हम आचरण नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि उनका अपना व्यक्तित्व है और आप जो है ना अपने व्यक्तित्व से काम करना चाहते हो, अपने हिसाब से काम करना चाहते हो, अपने मन से काम करना चाहते हो। इसलिए भगवान ने कहा मन मना भाव, है ना? मन मना भाव का मतलब क्या है? मेरे मन के अनुसार काम करो, अपने मन के अनुसार काम ना करो, अपने मन से काम ना करो, मेरे मन से काम करो। भगवान का अपना मन है, उनकी इच्छा है अपनी, वो चाहते हैं कि आप ये करो ये ना करो, व्यक्तित्व है। जो महाभारत का सीरियल था, महाभारत का जो सीरियल था उसमें क्या दिखाया गया? महाभारत का सीरियल में जो कृष्ण का जन्म है वो कैसे दिखाया गया? देव की वसुदेव कारागार में है, अंधकार है, अचानक खिड़की से प्रकाश आया, खिड़की से प्रकाश आया और उसी प्रकाश से एक बालक पैदा हो गया कृष्ण। देखा, देखा था? तो ये दिमाग दिमाग नहीं है उनके पास, इसलिए क्या मानते हैं कि प्रकाश से कृष्ण का शरीर बन गया है कि नहीं? तो ये बुद्धि नहीं है उनके पास, इसलिए इस प्रकार से जो है ना बताते, भक्त नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जब तक भक्त नहीं होंगे तब तक कृष्ण को समझ नहीं सकते हो। निराकार से साकार हुए, प्रकाश से एक बालक बन गया। गीता का उपदेश कृष्ण कर रहे हैं अर्जुन को, तो कई चित्र ऐसे दिखलाते हैं कि ऊपर से ओम ओम बना हुआ है, उससे प्रकाश कृष्ण के ऊपर आ रहा है और उससे गीता का उपदेश अर्जुन को दे रहे हैं। देखा चित्र, देखा? हाँ, कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं और ऊपर जो ना ओम बना करके उसकी प्रकाश की किरणें कृष्ण के ऊपर आ रही हैं, उसके द्वारा उनको मतलब गीता का प्रवचन देने की योग्यता आ गई। और जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी वाले हैं वो क्या कहते हैं कि कृष्ण के मुंह से परमात्मा शिव ने गीता बोली है जो निराकार रहते हैं। हमने उनको चिट्ठी लिखी तो फिर तो आपके परमात्मा शिव में बहुत बड़ी कमी है, उनका अपना मुंह नहीं है, बेचारे का मुंह नहीं है, जैसे भूत है किसी के शरीर में घुस करके फिर बोलने लगे, है ना? तो ऐसे परमात्मा शिव जो है ना आपके एक भूत हैं, निराकार हैं, तो कृष्ण के मुंह से बोल रहे थे। हमने कहे तो आपके परमात्मा शिव में बहुत बड़ी कमी है कि उनका अपना मुंह नहीं है, कितने बेवकूफ हैं। कहते कृष्ण ने गीता नहीं बोली, वो परमात्मा शिव ने गीता बोली है, और परमात्मा शिव कैसे हैं? निराकार हैं, निराकार हैं। फिर वो रामचरित मानस का जो है उदाहरण देते हैं, रामचरित मानस में क्या लिखा है? बिनु पगे चले सुने बिनु काना। तो बहुत बढ़िया, उन्होंने अपने तर्क को पुष्ट कर दिया। बिनु पगे चले मतलब जो परमेश्वर है उसके पैर नहीं है, बिना पैर के चलता है, और सुने बिनु काना और बिना कानों के सुनता है। तो वो जो है ना ईश्वर भाई को वो अपना पुष्ट करते हैं अपना सिद्धांत, बिनु पगे चले सुने बिनु काना और बिनु करे कर्म करे विधि नाना, बिना हाथों के नाना प्रकार के कर्म करता है, है ना? तो हमने कहा देखो अगर आपने ये, वैसे तो रामचरितमानस हमारी कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है, लेकिन अगर मान लो कि उसमें ऐसा लिखा हुआ है, तो आपने ये क्यों मान लिया कि उनके पैर नहीं है? अगर कहा है बिनु पग चले, बिना पैरों के चलता है, इसका ये भी तो मतलब हो सकता है कि अपने पैरों का उपयोग किए बिना भी चल सकता है। अगर रामचरित मानस में ये लिखा है कि बिनु पग चले, कि बिना पैर के चलते हैं भगवान, तो आपने ये क्यों मान लिया कि उनके पैर ही नहीं है? ये भी तो इसका मतलब हो सकता है कि अपने पैरों का बिना प्रयोग किए ही वो चल सकते हैं। और ब्रह्म संहिता में क्या लिखा है, अंगान यस्य सकल इंद्रिय वृत्ति मन्ति, वो प्रत्येक अंग से सब इंद्रियों का कार्य कर सकते हैं। प्रत्येक अंग से प्रत्येक इंद्रिय का कार्य कर सकते हैं। प्रत्येक अंग, मान लो ये अंग है छोटा सा, ये हिस्सा है उंगली, इसी से वो चल सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, हर काम इससे भी कर सकते हैं। प्रत्येक अंग से हर सब इंद्रियों का कार्य कर सकते हैं भगवान। तो बिन उपा के चले, ये भी तो मतलब है कि अपने पैरों का उपयोग किए बिना ही वो चल सकते हैं। वो हाथों से चल सकते हैं, आंखों से चल सकते हैं, मुंह से चल सकते हैं, सुने बिनु काना, अपने कानों के बिना भी वो सुन सकते हैं। ये क्यों आपने कह दिया कि उसके कान नहीं है, उसके पैर नहीं है? अगर मैं आपको कहूं कि आपकी आंखें नहीं है, आपके हाथ नहीं, आपके पैर नहीं, आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा।
तो जब ऐसी बात है तो भगवान का अपना व्यक्तित्व है और उनकी अपनी इच्छा है, तो फिर आप उन्हें प्रसन्न करो।
आप प्रसन्न कर रहे हो, मुझे पानी चाहिए, आप मुझे दूध ला के दे रहे हो, कैसे प्रसन्न होऊंगा मैं? भगवान आपसे कुछ चाहते हैं कि आप ये करो, आप ये ना करो? नहीं नहीं, मैं तो अपनी मर्जी से सब काम करूंगा। हाँ, भगवान तो हर हमेशा प्रसन्न है, भगवान तो सबसे प्रसन्न है। भगवान कहाँ प्रसन्न है सबसे? भगवान कहाँ हमेशा प्रसन्न रहते हैं? अपनी मर्जी से लोग काम कर रहे हैं और वो कहते हैं भगवान प्रसन्न है? कैसे भगवान प्रसन्न है? अगर प्रसन्न करना है तो क्या करो? हाँ, निर्देश अनुसार। हाँ, नहीं कैसे पता चलेगा भगवान का निर्देश? भगवद गीता से और शास्त्र, साधु, आचार्य, शास्त्रों से, साधुओं से और आचार्यों से भगवान का निर्देश पता चलता है। किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है। तो भगवान ने आज के श्लोक में जो है, जो जिसके पास दिमाग नहीं है उसका कुछ लक्षण बताया है। क्या लक्षण बताया? जिस व्यक्ति के पास दिमाग नहीं है तो उसका क्या लक्षण है? हाँ, उसका लक्षण क्या है? अल्पज्ञ या दिमाग नहीं है, उसका लक्षण क्या बताया भगवान ने? निराकार मानते हैं, निर्विशेष मानते हैं। लेकिन जो भगवान का आकार है उसको कैसे मानते हो? जो भगवान जब आकार में खड़े हैं, साकार में खड़े हैं भगवान, या अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, तो उस भगवान के रूप को क्या मानते हैं? माया मानते हैं, माया मानते हैं। भगवान के शब्दों में क्या है? भगवान ने अपने शब्दों में क्या बताया? क्या मानते हैं? भगवान का रूप, जो भगवान का रूप है उसको क्या मानते हैं, कैसे मानते हैं? भगवान के शब्दों में नहीं, अविनाशी अनुत्तम तो भगवान है, तो वो तो बुद्धिमान व्यक्ति है जो समझता है। लेकिन जो जिनके पास बुद्धि नहीं है वो क्या मानते हैं? अव्यक्त से व्यक्त हुआ, भगवान का जो रूप है उसको क्या मानते हैं? कि निराकार से, निराकार से साकार हुआ। भगवान का जो रूप है ये कैसे बन गया? निराकार से साकार बन गए, निराकार से साकार बन गए। इसका उदाहरण जो ऐसा मानते हैं, इसका हमने कोई उदाहरण दिया था, क्या उदाहरण दिया था? प्रेम से उनको योग्यता मिल रही है गीता का उपदेश देने की। या और भी मैंने उदाहरण दिया, हाँ कहाँ दिखाया था, महाभारत के सीरियल में दिखला है कि एक ज्योति अंदर आई कारागार के अंदर और जमीन में जो है ना वो ज्योति जो है ना क्या हुई, इकट्ठी हो गई और एक बालक बन गया। गलत है ना, गलत है ना, कैसे गलत है, आप कैसे जानते हैं गलत है। भगवान ने जन्म है तो जब भगवान ने जन्म लिया उसके पहले भगवान कहाँ थे, कैसे थे, भगवान अपने धाम में थे। हाँ इसका प्रमाण कि भगवान अपने धाम में थे, कोई प्रमाण है, है? भागवत में लिखा है कि भगवान अपने परम धाम में थे और योग माया को आदेश दिया कि मेरे जो अंश हैं शेष जी वो देवकी के साथ में गर्भ में है, उनको तुम रोहिणी के उत्तर में डालो। और योग माया ने भगवान के आदेश को स्वीकार किया, उनको सिर झुकाया और उनकी 3 बार परिक्रमा की। इसका क्या मतलब है कि भगवान कोई पर्सनालिटी है कि नहीं, कोई ऐसे निराकार से थोड़ी आवाज निकली, और उसने किसको प्रणाम किया, जब उसने प्रणाम किया भगवान की 3 बार परिक्रमा की, इसका मतलब क्या है कि भगवान का यही आकार था जिस आकार में अर्जुन से बातें कर रहे, इसी आकार में भगवान अपने परम धाम में थे, है ना। और जब परम धाम में थे फिर भगवान जब आए इस पृथ्वी में तो जन्म लेने के पहले कहाँ थे, कैसे थे। भगवान ने जब जन्म लिया उसके पहले भगवान कहाँ थे, कैसे थे, अपने परम धाम से जब आ गए कारागार में कहाँ थे, देवकी के गर्भ में थे, और गर्भ में थे तो सब ब्रह्मा शंकर जितने देवता हैं सब आकर के स्तुति कर रहे हैं। क्या क्या कहते हैं भगवान को, अजन्मा है क्या, आप अजन्मा है, आप अविनाशी हैं। धन्यवाद।
ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की
जय।
जगत गुरु शिला प्रभुपाद की
जय।
गुरु नंदन जिनके पुत्र मारे गए थे उन बूढ़े राजा धृतराष्ट्र की विदुर संजय और युत्सु ये तीनों सदा सेवा किया करते थे। तीन लोग सेवा करते हैं, कौन कौन, विदुर संजय और युत्सु। धृतराष्ट्र का एक पुत्र जो वैश्य पत्नी से पैदा हुआ था तो वो जिंदा रहा। वो जिंदा क्यों रहा, क्योंकि वो पांडवों के पक्ष में आ गया, कौरवों का पक्ष छोड़ करके पांडवों के पक्ष में आ गया, तो युत्सु जिंदा था। तो तीन लोग धृतराष्ट्र की सेवा करते थे, विदुरः संजयश्चैव युत्सुश्चैव कौरवम् उपासते स्मृतं वृद्धं हतपुत्रं जनाधिपम्। द्रोणाचार्य के प्रिय साले कृपाचार्य उन दिनों राजा धृतराष्ट्र के पास रहते थे, द्रोणाचार्य थे उनके जो ना गुरु, इन अब द्रोणाचार्य तो नहीं रहे तो कृपाचार्य हैं उनके गुरु। श्यालो द्रोणस्य यश्चासीन् दयितो ब्राह्मणो महान् सच तस्मिन् महे स्वाहा कृपा समय भवत् सदा। और व्यास जी क्या करते हैं, ये पुरातन ऋषि व्यास जी भी प्रतिदिन उनके पास आकर बैठते हैं। किसके पास आते हैं व्यास जी, धृतराष्ट्र के पास। तो व्यास जी का धृतराष्ट्र से क्या संबंध है, व्यास जी का धृतराष्ट्र के साथ क्या संबंध है, हाँ उनके पिता हैं, हाँ धृतराष्ट्र के पिता हैं व्यास जी। तो उनके पास आकर बैठते और उन्हें देवर्षियों की पितरों की और राक्षसों की कथाएं सुनाया करते थे। व्यासश्च भगवान नित्यम आसाम चक्रे नृपेण कथा कुर्वन पुराण अर्चन देवर्षि पितृ रक्षसाम। धृतराष्ट्र की आज्ञा से विदुर जी उनके समस्त धार्मिक और व्यवहारिक कार्य करते कराते थे। धृतराष्ट्र अंधे थे तो विदुर जी उनका जितना धार्मिक कार्य है सब करते और कराते हैं। धर्मयुक्तानि कार्याणि व्यवहारान्वितानि च धृतराष्ट्राभ्यनु ज्ञातुं विदुरस्तान्य कार्यं। और विदुर जी, युधिष्ठिर के भी कार्यों में अगर कुछ बदलाव करें तो युधिष्ठिर कोई विरोध नहीं करते थे। विदुर जी जो है युधिष्ठिर के कार्य में भी कुछ अगर बदल देते हैं, वे कैदियों को कैद से छुटकारा दे देते हैं विदुर जी। बद्ध के योग्य मनुष्यों को भी प्राण दान देकर छोड़ देते थे, किंतु धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर इसके लिए उनसे कभी कुछ कहते नहीं थे। किसी को अगर मौत की सजा दी है और विदुर जी ने छोड़ दिया तो युधिष्ठिर फिर कुछ नहीं शिकायत करते कि मेरे आदेश से उसको फांसी मिलनी थी, आपने क्यों उसको छोड़ दिया, या किसी को जेल में बंद किया है विदुर जी ने छुड़वा दिया, तो युधिष्ठिर कभी कुछ कहने के कहते नहीं थे। अकरो बंध मोक्षम चाम वद्यानाम मोक्षणम तथाम नच धर्म सदो राजा कदाचिन किंचित नब्रवीन। महातेजस्वी युधिष्ठिर बिहार और यात्रा के अवसरों पर राजा धृतराष्ट्र को समस्त मनोवांछित वस्तुओं की सुविधा देते थे। विहार यात्रा सुपुनः कुरु राजो युधिष्ठिरः सर्वान् कामान् महातेजान् तददावं विकासुते। और पांडव लोग धृतराष्ट्र को यथोचित रूप से बहुमूल्य वस्त्र और नाना प्रकार की मालाएं भेंट करते थे। मा शांति चा महारहाणी माल्यानी विविधानि च उपाजहरुर्यथान्यायम् धृतराष्ट्रस्य पांडवान्। वे उनके सेवा में पहले की भांति सुख प्रद हल्के गोदे हल्के पानक यानी मीठे शरबत देते हैं और अन्य विचित्र प्रकार के भोजन प्रस्तुत करते हैं धृतराष्ट्र के लिए। मेरे की मेरे एकानि मांसानि पानकानि लघुनि च चित्तान भक्षे विकारान चा चक्रुस्तस्य यथा पुराम। मांसानि का मतलब फल के गूदे हैं, मांसानि का मतलब वो नहीं है कि पशुओं का मांस खिलाते हैं। संस्कृत में शब्द है मांस का मतलब फलों का गूदा भी होता है। भिन्न भिन्न देशों से जो जो राजा वहां पधारते थे वे सब पहले की भांति धृतराष्ट्र की सेवा में उपस्थित होते थे। देखा, युधिष्ठिर का नियम था धृतराष्ट्र के दर्शन करो पहले, इसके बाद फिर युधिष्ठिर के पास आओ। इतना जो है ना युधिष्ठिर ने नियम बनाया था, कितना शिष्टाचार है। युधिष्ठिर अपने को हमेशा उनके अधीन समझते हैं। धृतराष्ट्र ये चापी पृथ्वी पालां समाजग्मु सततस्तहां उपातिष्ठन्ते ते सर्वे कौरवेन्द्रं यथा पुराणम्।